Srimad Bhagavatam Skanda Ek Adhyay Unis Shlok Sankhya Sol. Anuvad Ortat Paya A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Iskamsam Sthapakacharya Kedwara. Anuvad, me aap samast brahmanon ko namaskar karke punah yahi prarthana karta hoon ki यदि मैं इस जगत में फिर से जन्म लूं तो अनंत भगवान कृष्ण के प्रति मेरी पूर्ण आसक्ति हो, उनके भक्तों की संगति प्राप्त हो और समस्त जीवों के साथ मैत्री भाव रहे। तात्पर्य, महाराज परीक्षित ने यहाँ पर यह बताया है कि भगवत भक्त ही एकमात्र पूर्ण जीव है। भगवत भक्त किसी का शत्रु नहीं होता, भले ही उसके अनेक शत्रु हो। भगवत भक्त अभक्तों की संगति में नहीं रंगना चाहता, यद्यपि उनसे उसकी शत्रुता नहीं होती, वह भगवत भक्तों की ही संगति चाहते हैं। यह सर्वथा स्वाभाविक है, क्योंकि समान विचारकों में ही मैत्री संभव है और भक्त का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है समस्त जीवों के जनक भगवान श्री कृष्ण में पूर्ण अनुरक्ति। जिस प्रकार एक अच्छा बेटा अपने समस्त भाइयों से मित्रवत आचरण करते हैं, उसी तरह भगवत भक्त परम पिता भगवान श्री कृष्ण का अच्छा बेटा होने के कारण अन्य समस्त जीवों को अपने परम पिता से संबंधित देखता है। वह अपने पिता के निकृष्ट पुत्रों को सभ्य बनाकर उनसे ईश्वर के परम पितृत्व को स्वीकार कराते हैं। महाराज परीक्षित निश्चित रूप से भगवत धाम जा रहे थे, किंतु यदि उन्हें ना भी जाना होता तो भी उन्होंने जिस तरह के जीवन के लिए प्रार्थना की वह भौतिक जगत के लिए परम पूर्ण विधि है। शुद्ध भक्त कभी ब्रह्मा जैसे महापुरुषों का साथ नहीं चाहते हैं, उससे तो क्षुद्र जीव की भी संगति पसंद है। बशर्ते कि वह भगवत भक्त हो। महाराज परीक्षित का वचन से स्पष्ट है कि वे शुद्ध भक्त। जन्म से और जन्म के पहले भी वे शुद्ध भक्त थे, तो इसलिए तृतीय स्कंध में शुद्ध गोस्वामी का प्रस्ताव है, नहीं शौनकादि ऋषियों का प्रस्ताव है कि सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज दोनों समकक्ष थे, दोनों शुद्ध कृष्ण भक्त थे। तो इसलिए निश्चित कि दोनों के मिलन के बाद अवश्य ही हरि कथा हो। शुद्ध भक्तों की एक ही रुचि है कृष्ण भक्ति में, शुद्ध भक्तों का मुख्य लक्षण है भक्ति परेश अनुभाव विरक्तिरन्यत्र। तो अनुभव होते हैं कृष्ण का भक्ति से, और इसलिए शुद्ध भक्तों की कोई रुचि आसक्ति नहीं होती है अन्यत्र कृष्णेतर में, अर्थात किसी भी भौतिक विषय में शुद्ध भक्तों कि कुछ आसक्ति आकर्षण रुचि नहीं होते हैं। तो ये स्पष्ट है परीक्षित महाराज का वचन से, और परीक्षित महाराज का वचन इतना मूल्यवान या अमूल्य है कि शास्त्र में वो संकलित है। जैसे कि हम बहुत दिन के बाद इनकी वाणी सुनने से हम भी भक्ति मार्ग में प्रगति कर सकते इनकी कृपा से। तो इनकी हृदय भावना प्रकट करके हमको बहुत मूल्यवान उपदेश देते हैं। तो इसके पहला श्लोक में हम सुने कि परीक्षित महाराज का महान दिव्य गुण है शांति, और आज परीक्षित महाराज का क्या अभिलाष ये वो प्रकट है। परीक्षित महाराज राजर्षि थे और परीक्षित महाराज का महाप्रस्थान के पहले समाचार मिलकर कि महाराज परीक्षित का महाप्रस्थान होगा, तो पूरा विश्व से बहुत ऋषि संत योगी महात्मा इत्यादि आए थे, उपस्थित थे परीक्षित महाराज के साथ। और परीक्षित महाराज नम्र स्वभाव से सब ऋषि मुनिगण से जिज्ञासा कि सब नर का क्या कर्तव्य है, विशेषकर मृत्युमुखी नर का क्या कर्तव्य है। तो परीक्षित महाराज की कुछ भयभीति नहीं थी कि मेरा मृत्यु सामने है, परंतु इनकी एक ही इच्छा प्रार्थना थी कि अगले जन्म में मैं फिर शुद्ध भक्तों की संगति मिलूंगा। भक्तिनाथ ठाकुर वैसे भी प्रार्थना की, कीट जन्म हो जथा तु दस बहिमुख ब्रह्म जन्म नहीं आज, कि हे भगवान यदि आपकी इच्छा हो मैं एक प्रस्तुत हूं कीट के रूप में वापस आऊं। कौन ऐसे प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मुझको वर दो ऐसे कि मैं भविष्य में कीट हूं, मैं कोई ऐसा प्रार्थना करते मुझको बड़ा बनाओ, मुझको इंद्र बनाओ, मुझको जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीत मुझको कीट बना, कौन ऐसा प्रार्थना करते। तो कीट होना वो प्रार्थना नहीं है, प्रार्थना है कि कीट जन्म हो जथा तु दास। तो ये मुख्य विषय है कि भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि मैं आपका दास का रूप में वापस आना चाहता हूं, आपकी सेवा करना, ये वास्तविक प्रार्थना है। और अगर ठीक के रूप में मैं किसी ना किसी प्रकार से आपकी सेवा कर सकता हूं, और अगर ठीक का शरीर धारण करके मेरे मन में वो सेवा भावना भक्ति भावना होगी, तो ऐसा शरीर धारण करने के लिए मैं प्रस्तुत हूं, प्रस्तुत केवल प्रस्तुत नहीं हूं, मैं उत्सुक उत्साही हूं। परंतु अगर ब्रह्मा पद प्राप्त होते हैं लेकिन उसमें भक्ति भावना नहीं होती तो बहिर्मुख का ब्रह्म जन्म नहीं होगा, कोई इच्छा नहीं है ऐसे उच्च न पद प्राप्त करें। तो एक्चुअली सबसे बड़ा पद है कृष्णा सेवक। तो बहिर्मुख ब्रह्मा से भक्ति भावना भावित कीट श्रेष्ठ। बहिर्मुख मतलब जिनकी कोई रुचि नहीं है भक्ति में, जिनके मुख कृष्ण के ओर नहीं देखते, दूसरे तरफ देखते। एक बार बहुत दिन पहले की बात वो मेरा भारत आने के पहले, वो लगभग 30 साल के पहले, इंग्लैंड भक्ति वेदांत मन का मंदिर में था और वो मंदिर कक्ष बहुत सुंदर है और ऐसे बहुत सुंदर चित्र पट है, द्रव है, पत्थर है और ऐसे सब फर्श सब मार्बल है और ऐसे बहुत सुंदर देखते हैं। आप गए हैं ना? और सबसे सुंदर है राधा गोकुल आनंद भगवान, उस समय सीताराम लक्ष्मण हनुमान नहीं थे, तो बहुत सुंदर सिंहासन और स्कंदार्प कोटि कमनीय विशेष शोभ शोभ राधा गोकुल आनंद। वो राजा वो राजमहल में ऐसा है कि बहुत सुंदर सब अलंकार। तो एक बार एक वो कुछ इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम था, तो इसलिए एक कार में मिस्ट्री इलेक्ट्रिक मिस्ट्री बनाना था बनाना, तो वो टेम्पल रूम में, तो मैंने इसको देखा है, तो यहाँ पर ये मंदिर कक्ष में ले गए। ओ आश्चर्य लगा, तो कितना सुंदर है, तो ये इतना सुंदर वो इतना सुंदर, लेकिन भगवान को नहीं देखा, भगवान के बारे में कुछ नहीं बोला, ऐसे तो भगवान को नहीं देखा, तो ये सुंदर पेंटिंग है और सुंदर अलंकार वो इतना सुंदर है सब कुछ। तो बाद में मैंने इस तरफ भी आप देखिए तो नहीं देखा भगवान, तो और सब कुछ देखा कितने सुंदर, यही बहिर्मुख की अवस्था है कि मुख तो अंकों से वो सब कुछ देखा लेकिन भगवान को नहीं देखा। भगवान तो स्पष्ट मंदिर में उपस्थित है लेकिन इनको नहीं देखा। अथवा क्या होते हैं, तो भगवान को देखे भी तो भगवान को नहीं देखते। प्रभुपाद वो लॉस एंजलिस मंदिर वो श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की प्राण प्रतिष्ठा करने के समय बोला कि ये यथा नाम प्रपद्यंते तांस तथैव भजामि अहम्, कि ये त्रिमूर्ति कृष्ण है, प्रतिमा नहीं तुम्हें, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। तो अगर हम स्वीकार करते हैं कि यही कृष्ण है, तो यही कृष्ण हमारे साथ बात करेंगे। प्रभुपाद बोले कि ये कृष्ण किसे आया है हमसे बात करने के लिए। लेकिन अगर हमारा विश्वास है कि ये प्रतिमा है, पुत्र, पत्थर का पुत्र, तो ये कृष्ण है, लेकिन हमारे आंखों में तो केवल एक पत्थर, पत्थर की प्रतिमा हो, तो बहिर्मुख नहीं होना चाहिए, उन्मुख, उन्मुखी, शिवोन्मुख। कैसे भगवान को देखना है तो उन्मुख होना चाहिए, उन्मुख, शिवोन्मुख। शिवोन्मुख ही जीव आदो स्वयं एव स्फुरति अधः। जब तक हम बहिर्मुख होते हैं तब तक भगवान को देख के भी हम नहीं देखेंगे। वास्तव में हम सदैव भगवान को देखते हैं, लेकिन पहचान नहीं करते, क्योंकि स्वीकार नहीं करते कि भगवान है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं चामहि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सचमे न प्रणश्यामि। तो क्या है, भक्त सदैव भगवान को देखते हैं और भगवान सदैव भक्तों को देखते, विशेषकर भगवान को, भगवान भक्तों को लक्ष्य करते हैं। तो ये क्या है कि भक्त सदैव भगवान को देखते, ये क्या है, कल्पना? नहीं, हमारी कल्पना है कि भगवान नहीं है, वो ही कल्पना, और इसलिए हम भगवान को नहीं देखते। लेकिन प्रेमांजन अक्षुरित भक्ति विलोचने न संता सदैव हृदय विमुखी। अगर अंकों पर प्रेमांजन लगाना है, अर्थ मतलब ये एक उपमा है, अलंकारिक भाषा, तो प्रेमांजन तो ऐसे नहीं है कि हम दवाई की दुकान जाके तो एक ढाबा मुझको अंजन दो, मलम दो, किस प्रकार, तो वो क्या बोलते है, तो सिर दर्द के लिए चंद्र बाम बहुत प्रकार है, तो मुझको प्रेम अंजन दो। वो क्या है प्रेम अंजन, तो दुकान से ही खरीदना नहीं है, तो कैसे ही खरीदना है। कृष्ण भक्ति वस भावित मति ही क्रियताम यदि कतोपि लभ्यते। तो प्रेम अंजन भक्ति भावन उपलब्ध है, अगर उपलब्ध है, मतलब ये विश्व में सबसे मूल्यवान वस्तु, तो अगर किसी भी जगह में उपलब्ध है तो खरीदना है, तो उसका क्या धाम है। प्रियतम यदि कथो पे लभ्य थे तत्र, क्या मूल्य है, तत्र लोलम अति मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृताय न लभ्यते। वो प्रेम अंजन का मूल्य है लोलम, लोलम मतलब ललाज, तो ललाज नहीं वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जीवा वेगम, ऐसा नहीं है, भौतिक ललाज नहीं है। तो लालसा, तो तीव्र इच्छा कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, वो ही लोयम लालसा तत्लोलम अपि मूल्यम एकला। तो ये वो एक ही मूल्य है, परीक्षित महाराज जी कहते हैं। तो कैसे लोलम होते भगवान को प्राप्त करने के लिए। जन्म कोटि सुकृताएं न लंभ्यते, सुकृति भौतिक पुण्य से भगवत प्राप्ति नहीं होती। क्रॉ जन्म में अगर काम कांड या पुण्य कर्म करने है, हम एक कदम भी भक्ति में अग्रसर नहीं हूं। भक्ति और सामान्य पुण्य कर्म तो पूरा अलग वस्तु। तो ऐसा लोलम होना चाहिए। फिर क्या होते सेवन लोके ही जीवन अर्थात श्री कृष्ण नाम आदि न भावे गाय। तो भगवान को देखना सुनना स्पर्श करना इत्यादि संभव नहीं है, दूषित इंद्रियों। लेकिन ये सभी इंद्रिय अगर शुद्ध हो अर्थात भक्ति भावना से भावित होते हैं, तो भगवान स्वयं इनके नाम गुण रूप लीला हमारे मन और इंद्रियों में दिखाते हैं। तो परीक्षित महाराज आरंभ से और जन्म के पहले भी शुद्ध भक्त हैं, क्योंकि वे भगवान का एक नित्य पार्षद और वे इस भौतिक ब्रह्मांड में उपस्थित होते हैं। श्री कृष्ण की लीला का पोषण करने के लिए उसमें सहायता करें। जब जब भगवान आते हैं तब तब इनके नित्य पार्षद वृंद भी आते हैं। तो उनमें एक है परीक्षित महाराज। तो परीक्षित महाराज तो कैसे नित्य पार्षद है, क्योंकि भगवान को नहीं देता, खाली गर्भावस्था में भगवान का दर्शन। और उसके बाद तो थोड़े दिन के बाद तो भगवान सब यदुवंश कुरुवंश सब अप्रकट हुए। लेकिन नित्य पार्षद का मतलब जो सदैव भगवान के साथ है, इसके बारे में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कुछ सुंदर विचार किए। तो ब्रजवासी कौन है? उन्होंने कहा कि ब्रज में बहुत मायावादी पखंडी और भिखारी, मतलब जो वृंदावन जाते हैं चपाती समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए, सहज्य भी बहुत है। तो वे क्या ब्रजवासी है? तो एक प्रकार से बहुत सच है, लेकिन वे नंद यशोदा श्रीदाम सुदाम स्तोक कृष्ण के न्याय ब्रजवासी नहीं है।
फिर भक्ति विनोद ठाकुर, खाली एक बार वृंदावन गए हैं आत्म जीवनी में, तो वो लेख है कि खाली एक बार वृंदावन गए और ब्रजवास करने की इच्छा थी, लेकिन दिव्य वाणी से उपदेश में ब्रज मत जा, बहुत सेवा है तुम्हारी अभिन्न वृंदावन नवरी धाम में। तो भक्तिनाथ ठाकुर क्या ब्रजवासी है या नहीं? और नरोत्तम दास ठाकुर, नरोत्तम श्रीनिवास श्यामानंद तीनों व्रत किए कि हम पूरे जीवन में ब्रजवास करेंगे, हम ब्रज के बाहर नहीं जाएंगे। तो दो तीन दिन के बाद इनके इनके शिक्षा गुरु जीव गोस्वामी तीनों को बुलाया और बोले अभी तुम जाओ सब ब्रज के बाहर बंगाल और ओडिशा वापस जाओ और वहां पर रहो प्रचार करो। और ऐसे ही बहुत शुद्ध भक्त थे जो बाह्य विचार में ब्रज में वास नहीं किए, लेकिन वे नित्य ब्रजवासी हैं, वे वास्तविक ब्रजवासी हैं। गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज भक्तिविनोद ठाकुर को बोले क्यों तुम खाली स्थान खाली कथा में रहते हो, आओ मेरे साथ रहो नवरी धाम में। तो भक्तिविनोद ठाकुर जो भक्ति भवन कलकत्ता में रहते थे, तो एक मैसेज बाबूजी महाराज को भेज दी कि जिधर मैं रहता हूं वो कलकत्ता नहीं है, मैं कलकत्ता में नहीं रहता। तो ठिकाना है केदारनाथ दत्त भक्ति विनोद भक्ति भवन मानिकताल स्ट्रीट कलकत्ता। तो भक्तिविनोद ठाकुर मानिकताल स्ट्रीट में कलकत्ता में नहीं भक्ति भवन में रहते जो संपूर्ण अप्राकृत है, इसका कुछ लाभ नहीं है, कुछ स्पर्श नहीं है कलकत्ता के साथ। यथा वैष्णवगण तथा वृंदावन। तो परीक्षित महाराज की इच्छा थी कि किसी भी जन्म ले सकता हूं लेकिन आपके भक्तों की संगति में, वो मेरी इच्छा है। क्योंकि यथा वैष्णव गण सही स्थान वृंदावन, तो भक्तों की इच्छा है ब्रजवास करना, तो ब्रजवास का खाली वास करना नहीं, ब्रजवास का मतलब सेवा, कृष्ण सेवा। तो वो संभव है भक्तों के साथ। अगर हम सोचते हैं कृष्ण और मैं, बस मैं कृष्ण सेवक हूं, मैं कृष्ण सेवा करता हूं और बस हम दोनों मैं और कृष्ण, तो वो भक्ति भाव नहीं है। और कृष्ण ऐसे भाव ग्रहण नहीं करते, तो सेवा कैसे हम? वास्तव में कृष्ण का खाली एक सेवक है, सेवक नहीं है, सेविका श्रीमती राधिका, और सब दूसरे जो सेवक है तो राधिका की सेवा में सहायता करते हैं और वो भी
साक्षात राधा की सेवा वो भी संभव नहीं है, क्योंकि राधा जी की नित्य साखी है। तो ऐसे दास अनुदास अनुदास होना चाहिए। ललिता, विशाखा, इंदुलेखा इत्यादि आठ मुख्य साखी है। और श्री कृष्ण अपना दिव्य आनंद वर्धन करने के लिए और भक्तों को आनंद विस्तार करने के लिए श्री कृष्ण जो अद्वैत वस्तु एक भगवान है, अन्य रूप क्या बोलते हैं धारण करते, भगवान तो रूप धारण नहीं करते, वो रूप ही भगवान। तो भगवान बहु रूप में उपस्थित होते हैं, जब जब नहीं है ये सब सनातन रूप है। तो कृष्णा विष्णु रूप में, लक्ष्मी देवी के साथ, लक्ष्मी देवी है राधा का अन्य रूप, जैसे विष्णु कृष्ण का अन्य रूप है तो लक्ष्मी राधा का अन्य रूप। और ऐसे ही कृष्ण की सेवा अनंत रूप अपार रूप से विस्तार होते हैं और असंख्य भक्त है श्री कृष्ण की सेवा करने, असंख्य प्रकाश है कृष्ण को आनंद देने के लिए। तो भक्तों की इच्छा है तो असंख्य भक्तों का दौड़ में एक स्थान प्राप्त करना, जैसे कि मैं भक्तों की सेवा कर सकूं। भक्तों की सेवा का क्या मतलब, तो नहीं है कि भक्तों को इंद्रिय सुख देना, भौतिक सुख देना, क्योंकि भक्तों की कोई इच्छा नहीं है अपना सुख के लिए। तो भक्त सेवा का मतलब सहायता करना इनकी कृष्ण सेवा में, इनकी भक्त सेवा में। तो परीक्षित महाराज की इच्छा थी भक्त संगति प्राप्त करना, तो निश्चित था कि महाराज परीक्षित गोलोक जा रहे थे, लेकिन ये भक्त का नम्र स्वभाव है कि वे सोचते कि मैं योग्य नहीं हूं भगवान के पास जाने, तो मेरा अगला जन्म तो निश्चित है। लेकिन यही इच्छा है कि भक्तों के साथ, भक्तों के संग में मैं रहूंगा। हरे कृष्ण।
इच्छा व्यक्त करते हैं पुनः मुझे पुनश्च भूय भगवती अनंते रति, भगवान में मेरा फिर से प्रेम हो और फिर से भगवान के भक्तों का संग मिले, भगवान के भक्त हैं उनका संग मिले। मैत्रेष्टु महत्वयाम प्रयाम सृष्टि, कहां विचर मिले कहीं भक्तों के यहां संग मिलना चाहिए और लोगों से अन्य लोग मैत्रेष्टु सर्वत्र नमो दीजिए, और अन्य लोग हैं किसी से हमारा झगड़ा नहीं होना चाहिए, झगड़ा होगा तो डिस्टर्ब हो जाए, किसी अन्य लोग जितने लोग से मिल सकता है सब ठीक है सब, लेकिन उनका संग नहीं होना चाहिए सकता हो संग होना एसोसिएशन भक्तों का, लेकिन और लोगों से सम दृष्टि हो सबसे अच्छा है। उसे झगड़ा भी करेंगे तो दृष्टि भक्ति में व्यवधान आएगा। इच्छा है, अंतिम इच्छा है सृष्टि हमारा जन्म हो सकता है, कर्म खराब होगा तो कहीं जन्म लेना पड़ेगा सृष्टि, कहीं भी जाऊं उसकी चिंता नहीं है। चिंता इसी बात की है कि हमें कहीं भी रहो तो मुझे भगवान के जो है उनका ही समझ।
अच्छा मानता जी है कि भक्त मतलब मित्रत्व सभी प्राणियों से, लेकिन संग केवल भक्तों से। तो मित्रत्व का मतलब नहीं है कि गणेश संग करना, सद्भावन ऐसे।
अवतार रहते उन्मुख भगवान के पास, भगवान के तरफ उनका मुंह होता है, मुंह भगवान कृष्ण कृष्णाभिमुख। और मान लो तो विषया भी मुख होता है, उनका मुंह होता है भगवान के तरफ में विषय की तरफ।
क्या
बहिर्मुख
बहिर्मुख विमुख,
बहिर्मुख मतलब विषयाभिमुख, बाहर मतलब बाहर में जहाँ विषय है भगवान जहाँ है उधर मुख नहीं होता है, लेकिन जहाँ विषय होता है इंद्रिय तर्पण के साथ उधर मुख अपने आप उनका रहता है। विषया बहिर्मुख मतलब विषय के तरफ मुख, बही मतलब विषय संस्कृत भगवान के
धावतो बही। अच्छा यथे विदु स्वाच कृतेंगे विष्णु दुराशय बहिराश तंत्र मुर्दाम बाधा धावतो भी वो यस्यास्ति भक्ति भगवत किंचन सर्वाय गुण तत्र समासिषु हराव भक्तस्य कृतो महान गुणः मनोरथे नास्ति धावतो बहिः।
वही धावतो मतलब विषय, विषय की तरफ दौड़ते दौड़ते रहते हैं लोग भगवान की तरफ नहीं, जहाँ विषय है वही मतलब विषय बाहर विषय खाली तो जगह नहीं है यहाँ पर।
तो दो प्रकार का दर्शन या रुचि है, एक एक कृष्णोन्मुखी और दूसरा कृष्ण विमुखी विषय। ओके वो क्या है वो श्लोक विचेतम नतेतम यतीयत न प्रतीयत चात्मनि यथातम वो क्या है अभी तो याद नहीं है। मतलब श्री कृष्ण कहते हैं कि वो सब कुछ जो तुम देखते हो जो मेरे संबंध में नहीं है तो वो ही माया है, यथा भासो यथा तमा। क्या माइक लो।
ने कहा कि भक्तिविनोद ठाकुर आशा करते हैं कि जन्म उसको मिले प्राप्त हो जाए।
नहीं जता तो दास, वो मुख्य विषय है कि तो दास होना चाहिए,
दास होना चाहिए।
तो दास तो अगर दास होने के लिए कीट शरीर धारण करना आवश्यक तो वही प्रस्तुत है।
तो कीट से आय सेवा कर सकते हैं हम।
कम से कम स्मरण करना। वो रामलीला में वो वो क्या बोलते हैं हिंदी में, किला हरी, तो कीट भी इतने सर एक कण रेती वो सेतु बंध का निर्माण नहीं दे सकते.
बहिर्मुख शब्द का अर्थ ऐसे कह रहा था कि उसके विपरीत एक शब्द अंतर्मुख है.
हाँ विपरीत
संता सदैव हृदय ये शुभिलोक है. बहुत होते
असंत सदैव
बाहर
असंत सदैव भौतिक कामनाओं की पूर्ति का अवसर ढूंढते हैं. वो क्या है वो काम का वो क्या है कामों का सदैव. वो एक उदाहरण है कि अलग अलग व्यक्ति जंग हो जाते हैं और वैश्य वृत्ति व्यक्ति देखते हैं कि अगर खरीद लूंगा तो ये सब फेयर कट के तो इतना सा लाभ होगा और दूसरे व्यक्ति जाते हैं और सोचते तो ये अच्छा वो कामों का भोग विलास ही सोचते कि ये अच्छा जगह होगा. वो युवतियों के साथ भोग विलास करना और भक्त भगवान को देखते हैं और सोचते कि तपस्या ध्यान के लिए अच्छा स्थान है. और एक दूसरा उदाहरण है कि चाणक्य पंडित कहते हैं कि एक वस्तु तो दूसरे दूसरे लोग अलग अलग कहते हैं. तो सुंदरी युवती तो साधारण लोग साधारण आदमी देखते हैं कि भोग्य वस्तु है. वो काम पण्य का वस्तु है. वो खुद से देखते हैं वो मांस जैसे और ऋषि देखते हैं वो पत्थर जैसे. तो सब कुछ भावने के ऊपर निर्भर करते. तो पूतना आए थी भगवान को विष खिलाने के लिए और माँ यशोदा तो स्तन देते हैं. लेकिन यशोदा और पूतना की भावना बिल्कुल विपरीत. तो कितना दयालु है भगवान. तो मातृ भावना ग्रहण की क्योंकि पूतना तो पूर्व जन्म में बलि महाराज का बेन थोड़ा समय में कुछ मातृ भावना हुई. जब पहले पहले वहां मंदिर को देखे सोचे कितना सुंदर बालक है तो कुछ ऐसी मातृ भावना थी. लेकिन जब समझ ली कि ये हमारे शत्रु है विष्णु तो फिर द्वेष भावना प्रकट की. तो वो द्वेष के अनुसार अगले जाना में पुतना राक्षसी हुई. लेकिन क्योंकि अज्ञात से भी विष्णु भगवान को स्नेह हो गया. अज्ञात मतलब नहीं जानते थे ये विष्णु. तो दयालु कृष्णा वो मातृ स्नेह ग्रहण करके पुतना को मातृ स्थिति दी. हरे कृष्ण.